टाई
परफेक्ट। तो ऑडियंसेस, हम लाइव हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडिया चाइना के महत्वपूर्ण इशू पे बात करने के लिए मेरे ख्याल से इंडिया की बेस्ट वॉइस आप सभी जानते हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी जी। तो वो उनसे बात करेंगे, थोड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में पूछेंगे कि क्योंकि उन्होंने हेड भी किया है कि क्या एग्जैक्टली इंडिया चाइना में हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन शुरू में पूछूंगा, जनरल साहब के जवाब लेंगे, और टुवर्ड्स द लास्ट 10-15 मिनट आप अपने क्वेश्चंस भेज देना मुझे। वैसे भी ट्विटर पे बहुत सारे आए हैं, तो मैं वो थोड़े जो आपके ऑडियंस के स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो पूछ लूंगा। और जो जो आप में से पहली बारी जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सर सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सर। सर, पहला क्वेश्चन जो बहुत देर से दिमाग में चल रहा है लोगों के, एंड मैं मई में वापस जाता हूं, कि 50 साल से लगभग शांति चल रही थी, मई जून में सडनली ये क्या चाइना के माइंडसेट में आपको लगता है चेंज आया जो वो अग्रेसिव हुए, या क्या ग्राउंड सिचुएशन है कि जो गलवान वैली क्लैश हुए और उससे पहले भी जो हो रहा था, ये क्यों एकदम से चेंज आया है सर?
देखिए, ये साल 2020 थोड़ा खास रहा है। इस साल जो है यहाँ पे हमारा चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया है, कोरोना देन है चाइना। ये मैं साफ बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये हमारे हिसाब से कोई नेचुरल पेंडेमिक नहीं, ये कोई वुहान के बाजार से निकला एक बीमारी नहीं। ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड एक बैड कोरोना वायरस है, जिसपे सार्स का जो हुक मॉलिक्यूल है वो ग्राफ किया गया। वेदर ये वहां से लेबोरेटरी से एक्सीडेंटली रिलीज हुआ या जानबूझ के रिलीज किया गया, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसके बाद जो पीएलए ने कार्रवाई की है वो उससे लगता है कि उसको फोर नॉलेज थी कि ये होने वाला। ओनली एंड ओनली दिस एक्सप्लेन कि चीन का जो आक्रामक रवैया और जो आक्रामक तेवर कोरोना के बाद, भाई जब आपके देश से कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, 20 बिलियन लोग जो है संक्रमित हुए हैं, 1 बिलियन लोग बेचारे मर चुके हैं, कम से कम द लीस्ट एक्सपेक्टेड वॉज कि चाइना विल शो कंट्रीशन, चाइना थोड़ा अपोलोजेटिक होगा, बैकफुट पे होगा। बिल्कुल नहीं सर, उसके ठीक उल्टा, चाइना जो है अपने तमाम नेबरहुड के साथ दादागिरी के दौर पे आ गया है, चाहे ईस्ट चाइना सी में जापान हो, चाहे ताइवान हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे साउथ चाइना सी में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये छोटे छोटे देश हो, ये सब पे दादागिरी का दौर ये चाइना ने जैसे ही कोविड शुरू हुआ जनवरी में शुरू कर दिया था। इस साल हमारे बरखिलाफ अप्रैल मई के महीने में चीन की जो दो डिवीजन थी, फोर्थ आइलैंड मोटराइज डिवीजन और सिक्स्थ मैकेनाइज डिवीजन, ये भारतवर्ष के बरखिलाफ, ईस्टर्न लद्दाख के बरखिलाफ एक्सरसाइज कर रही, ठीक है साहब, और हर साल ये एक्सरसाइज होती है और हम भी एक्सरसाइज करते हैं। इस साल कोविड के चलते हमने एक्सरसाइज नहीं करी, एक्सरसाइज को रहने दिया, रद्द कर दिया, और चीन ने इसका पूरा फायदा उठा के एक्सरसाइज से अपने जो ट्रूप्स थे सिविल ट्रकों में बिठा के, जो कि कंस्ट्रक्शन का माल लेके आ रहे थे एक नई एयरपोर्ट के लिए, उसके गाइज में अपने ट्रूप्स बिल्कुल सीमा पे भेज दिए और 5 पॉइंट्स एक्टिवेट कर दिए सीमा पे, देपतांग में, हॉट स्प्रिंग में और गलवान में और पंगोंग सो नॉर्थ वगैरह पे 5 पॉइंट एक्टिवेट किए यहाँ पे, और उसके अलावा 1 पॉइंट नॉर्थ सिक्किम में एक्टिवेट किया। पूरी दुनिया हैरान रह गई, वी वर टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन फिर इंडिया ने एकदम मुस्तैदी से रिएक्शन किया, चीन को सोल्जर फॉर सोल्जर, टैंक फॉर टैंक, आर्टिलरी गन फॉर आर्टिलरी गन मैच किया बॉर्डर के ऊपर, और हमको समय लगा, यू सी, बिकॉज एकदम से वी वर टेकन बाय सरप्राइज। तो हमारा जो पहला रिएक्शन था वो काफी रिएक्टिव और मतलब कि नी जर्क जैसा था और चीन हम पे हावी दिख रहा था। जब उसने देखा कि हमने इतनी जबरदस्त काउंटर मोबिलाइजेशन करी है तो चीन काफी विस्मित हो गया और उसने बातचीत का दौर शुरू किया। उसको लगा कि ये चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। बातचीत का दौर हुआ, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे बातचीत, डिविजनल कमांडर, और फिर पहली बार कोर कमांडर लेवल पे बातचीत हुई बॉर्डर पे, बॉर्डर टॉप। ये
जनरल,
बातचीत चल रही थी, दोनों साइड्स मान चुकी थी अपनी क्या कहते हैं डिसएंगेजमेंट के लिए। जब 15 जून को, आई जस्ट सॉरी, जब 15 जून को शी जिनपिंग साहब के बर्थडे के दिन, जो उनके वेस्टर्न थिएटर कमांडर साहब हैं, उन्होंने अपने बॉस को खुश करने के लिए ये इंसिडेंट स्टेज किया गलवान घाटी में। और इसमें ये क्लैश छोटे से शुरू हुआ था। हमारा 30 आदमी का एक पेट्रोल वहां गया था, हमारे कर्नल साहब के नीचे 16 बिहार का, उसको उन्होंने एम्बुश किया, कर्नल साहब को बुरी तरह से घायल किया और लोग पगला गए हमारे लड़के जब अपने सीओ को उन्होंने गिरते देखा। और साहब फिर झड़प भड़ी, हमने भी रीइंफोर्समेंट बुलाई, उन्होंने रीइंफोर्समेंट बुलाई और वहां पे आखिर में कोई 400 450 चीनी सैनिक और 200 250 भारतीय सैनिकों के बीच जबरदस्त झड़प। चीन के जो है 43 मारे गए और अभी खबर आ रही है कि 60 की खबर कंफर्म आ रही है, उनकी जो है कब्रें दिख रही हैं और हमारे 1 कर्नल और 20 जवान शहीद हुए। देखिए साहब, इसके साथ जो भी मेरे हिसाब से जो भी पीस अकॉर्ड थे 1993, 1996 और 1996 का जो आर्टिकल 6 कहता था कि साहब बॉर्डर के 2 किलोमीटर आले दुआले कोई हथियार नहीं कैरी किए जाएंगे, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, मेरे हिसाब से ये तो साहब पहली चीज कचड़े के डब्बे में डालनी चाहिए जब आपके 20 जवान शहीद कर दिए चीन के। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। उसके बाद हमारी फौज ने जो है जब ये धक्का लगा तो फिर हमारी फौज ने भी वहां ट्रूप की बढ़त करी और अब साहब हमने चीन को जैसे को तैसा जवाब दिया है, टिट फॉर टैट।
जनरल
अगर वो
बच्चू,
नॉर्थ जी
जनरल उस पे मैं बाद, मैं अभी पहले 14 जून पे ही दो तीन से दो चीजें इसमें मैं जानना चाहूंगा जनरल बख्शी, आपके ओपिनियन में। एक तो मैंने आपकी पीड़ा देखी थी, आपने ट्वीट भी किया था कि हमारे जो 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं कि उनको आर्म्स, जैसे आपने अभी भी कहा कि उनको आर्म्स होने चाहिए थे, उस पे भी आऊंगा। पर पहले मेरा दो क्वेश्चंस हैं। एक कि क्या हमने जो एक्सरसाइज नहीं की और चाइना ने किया, आप इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर भी मानते हैं या यू थिंक ये पता करना बहुत मुश्किल था? दूसरी बात कि चाइना ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, और दूसरी बात कि कई लोग कहते हैं रशिया ने आश्वासन दिया था कि जो ये सारे मैन्यूवर्स हो रहे हैं ये रेगुलर हैं और चाइना का ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों इंटेलिजेंस पे, दोनों इंटेलिजेंस से लिंक्ड हैं, आप कैसे देखते हैं कि बहुत डिफिकल्ट का टू फाइंड या वी हैव टू इम्प्रूव, ये हमें इंटेलिजेंस फेलियर मानना पड़ेगा कि कुछ फेलियर हुआ हमारे इंटेलिजेंस से?
देखिए साहब, जब भी पहल दुश्मन के पास होती है वो हमेशा अपनी एक्टिविटी को मास्क कर लेता है और सबसे मुश्किल होता है इंटेंट को जानना। आप समझ रहे हैं, देखिए ये जो दो मैकेनाइज्ड डिवीजन ईस्टर्न लद्दाख के ऑपोजिट आ गई है, ये आपको हर कोई सैटेलाइट फोटोग्राफ एक एक टैंक एक एक गाड़ी एक एक जीप दिखा देगी, एक एक बंदा दिखा देगी, लेकिन उसका इंटेंट क्या है? क्या वो एक्सरसाइज के लिए आया है, अपना नॉर्मल युद्ध अभ्यास कर रहा है, या वो किसी और मकसद से आया है? इसके लिए ह्यूमिड चाहिए। ह्यूमिड जो है चीन के बरखिलाफ थोड़ी मुश्किल है, भाषा की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वहां पे आबादी बड़ी कम है, ये तो उस आबादी से ही आपको खबर आ जाए। आबादी गिनी चुनी है जिसको चीन बिल्कुल जकड़ में रखता है, अपनी तिब्बत के बेचारे लोगों का क्या हाल कर रखा है। तो देखिए सरप्राइज होना, और फिर उन्होंने क्या किया कि वो फौजी ट्रक्स में नहीं आए, वो सिविल ट्रक्स में जिसमें कंस्ट्रक्शन का सामान आ रहा था उसमें आ गए। तो ऐसे में किसी भी साइड को भलेखा लग सकता है। कारगिल में भी हम लोग सरप्राइज हुए थे, ठीक है साहब, और लेकिन फिर सरप्राइज टू रेकनिंग, यू सी कितनी देर में आप
सरप्राइज
वापस करते हैं,
टू व्हाट बख्शी साहब, आपकी आवाज
रेकनिंग
कटी।
रेकनिंग रेकनिंग। देखिए जो हमने ये किताब का नाम है जनरल बीपी मलिक की, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, सरप्राइज टू रेकनिंग। हाँ सरप्राइज आप हो, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कितनी जल्दी आप अपना बैलेंस रीगेन करके दुश्मन पे पलटवार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल बहुत अच्छे से हुआ है। और एवरी टाइम अगर दुश्मन के पास पहल है तो वो आपको सरप्राइज कर सकता है, उसके बाद क्या होता है वो ज्यादा जरूरी। और इस बार भी इसी प्रकार का जो हुआ है, यस टू एन एक्सटेंट इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए होता क्या है कि हर साल जब चीन एक्सरसाइज करता है, हम भी अपने ट्रूप एक्सरसाइज के लिए आगे भेज देते हैं, ताकि अगर ऐसी वो कोई ओछी हरकत करे तो हम आसपास है जल्दी से अपने डिफेंस पकड़ लें। इस साल कोविड की वजह से नहीं हुआ। और देखिए मैं दुनिया को एक चीज कह रहा हूं जो लोगों को समझ नहीं आ रही अभी तक, चाइना वॉज फुली अवेयर। जो आप हाइंडसाइट में देखे, पीएमए वॉज फुली अवेयर कि कोविड होने वाला है, अमेरिका का हालत खस्ता हो जाएगी, भारत की हालत खस्ता हो जाएगी, वो फौजी सैनिक जवाब जवाबी कार्रवाई करने के लिए बहुत कंस्ट्रेंट आ जाएगी। अब भी लोग हमको बोल रहे हैं साहब कुछ मत करो, कुछ मत करो, थूका चाट लो, खून का घूंट पी लो, बिकॉज आपकी इकोनॉमी की तबाही हो चुकी है, आपका ये हो चुका है, आपका वो हो चुका है। यही सोच के तो चीन ने किया है, मेरा कहना ये है यही सोच के चीन ने किया है। और अगर आप उसको झटका देना चाहते हैं तो यू हैव टू डू द अनएक्सपेक्टेड। चीन आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ नहीं करें। हमारी फौज की तारीफ करना चाहूंगा मैं कि ये सब होते हुए भी उन्होंने चीन को टिट फॉर टैट दिया है, उसी भाषा में जवाब दिया। अगर चीन नॉर्थ पंगोंगसो में आया तो हम साउथ पंगोंगसो में घुस गए। और याद रहे कि सामरिक दृष्टिकोण से साउथ पंगोंगसो बहुत ज्यादा सामरिक महत्व है उसका, क्योंकि वो मेन इन्वेजन रूट है, हमले का रास्ता है। सन 1841 में हमारे डोगरा जनरल जोरावर सिंह इसी रास्ते तिब्बत पे चढ़ाई की थी उन्होंने अपनी डोगरा फौज को लेके, जो आजकल मेरी रेजिमेंट है जम्मू एंड कश्मीर राइफल। वो 750 किलोमीटर तिब्बत के अंदर गए थे और उन्होंने मानसरोवर झील और जो कैलाश का पवित्र हिंदुस्तान है उस पे कब्जा किया था। बड़ी भारी लड़ाई हुई थी मानसरोवर झील के किनारे एक तिब्बती और चीनी आर्मी के साथ। और जो चीन का मानतलाई झंडा है वो हमारी उस वक्त डोगरा फौज ने छीना था, जो हमारी 4th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल के ऑफिसर मेस में आज भी आप जाके जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद चीनियों ने पलटवार किया और वो लेह तक आ गए थे। फिर महाराजा गुलाब सिंह जो गए हुए थे अफगानिस्तान, अपनी फौजें लेके आए और चीन को वापस धकेला और जो मौजूदा बॉर्डर है वो तय हुआ। 1962 में भी चीन ने इसी रास्ते हमला करने की कोशिश की थी, चुशूल पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी, जबकि रेजांगला में 13 कुमाऊं ने उसके दांत खट्टे कर दिए और इतनी बुरी तरह से वहां पे कोई 1300 चीनी सैनिक मारे थे, हमारे मुट्ठी भर 150 सैनिकों ने मारे थे। 7 हमले उन्होंने किए, एक एक हमारा जो जवान था तकरीबन मारा गया, 13 बचे थे 115 की कंपनी में से जिंदा, और वो भी बेचारे वहीं पे बाकी सब जम के लाशें जम गई थी, जो कि 3-4 महीने बाद भी। तो ये मेन इन्वेजन रूट है। और खुशी की बात ये है कि जब हमको खबर मिली इस बार हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत सतर्कता दिखाई, क्योंकि हम अलर्ट हो चुके। जहां खबर आई कि साहब चीन की फौज ब्लैकटॉप को पकड़ने आ रही है, हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो 9 विकास बटालियन को हाई मोबिलिटी टेरेन व्हीकल जो है ऑल टेरेन व्हीकल में जल्दी से चढ़ाया गया। और इसके पहले कि चीन जो कि एसयूवीज में आ रहे थे, सड़क उनकी बनी हुई थी, इसके पहले कि चीन उस ब्लैक टॉप के टॉप तक पहुंच सकता, हमारे लड़के वहां पहुंच गए। और जब चीनी आए तो वो हैरान हो गए। चीनी उतरे, उन्होंने अपनी आयरन की रॉड्स और बेसबॉल बैट और ये सब चाकू छुरियां और पत्थर निकाले और वो फिर वही गलवान का हिस्सा किस्सा दोहराना चाहते थे, जबकि हमारे लड़कों ने सीधी चेतावनी दी, अपने हथियार दिखा दिए कि साहब अब मजाक नहीं होगा, अब मजाक नहीं होगा, ठीक है साहब। और उसके चलते चीन जो है वो वापस गए, लेकिन तिल मिलाकर फिर उन्होंने सोचा कि यह स्मॉल आर्म्स फायर हो सकता है हम पे, तो वो जाके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर लेके आए कि जिसपे गोली का कोई असर नहीं होता। तब तक हमने अपने देखा था कि ये कुछ ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम अपने टैंक ले आए और हमारे टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देख के चीन को मुंह की खानी पड़ी और चुपचाप उल्टे बांस बरेली को वो लोग अपनी डूब दबा के वापस चले। ठीक है साहब, अब जो है ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रेजांगला, ये पूरी कैलाश की जो पहाड़ की रिज है वो भारत के हाथ में है। जो बोल्डो की चीनी गैरिजन है वो नीचे है, यानी 1962 के ठीक विपरीत हुआ है, इस तरह ठीक विपरीत हुआ है। तब हम वो न्यामका छू के खड्डे में थे और वो जो है वो हाइट पे थे, वो जिसको वो बोलते हैं हाथुंगला पहाड़ इस तरफ, और दूसरी तरफ वो जो उनकी हाइट थी वो पहाड़ पे थे और हम खड्डे में। अब वो खड्डे में और हम पहाड़ पे, वी आर डोमिनेट, वी आर डोमिनेट।
जनरल बख्शी, ये बहुत आप अब इस समय जो जिसे बोले टेरेन है, आप पूरा एलएसी पे देखते हुए आपको क्या लगता है कि उन्होंने पहले सरप्राइज किया, एज यू सेड वी रेकन बैक और हमने अच्छा किया और सरप्राइज भी, और मैंने जैसे कहा, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था उस समय भी, वेर यू वर वेरी ट्रबल्ड के हमने हमारे पास हथियार क्यों नहीं है 2 किलोमीटर के बॉर्डर पे, एंड यू सेड वी आर अ मॉडल फोर्स। आपकी वो पीड़ा, आपका वो पेन दिख रहा था उस समय, पर जो अगस्त सितंबर में ये सरप्राइज ऑपरेशन इंडिया ने किया है, जैसे सितंबर में किया है, तो ये आपके हिसाब से इज अ फुल सक्सेस?
इट्स अ कंप्लीट सक्सेस इन एज मच जो कि सारी डोमिनेटिंग टेरेन है इन द मेन इन्वेजन रूट एरिया, वो अब भारत की पकड़ में, और जो बोल्डो की चाइनीज गैरिजन है पूरा कैंप लगा हुआ है वो जैसे बिलियर टॉप टेबल जैसे आप उसको ऊपर से देख सकते हैं। एंड
हेलो,
उस वक्त सबसे बड़ी दिल में दर्द ये थी कि साहब हमारी लाखों करोड़ रुपया हर साल खर्चा होता है हथियारों, लेकिन 1996 के एग्रीमेंट के तहत हमारी फौज के हाथ पैर बांध के रखे हुए थे। चलिए मान लिया साहब कि हाथ पैर बंधे थे, 15 जून के बाद हाथ पैर कैसे कैसे कोई सरकार बांध सकती है हमारी फौजों? आई मीन इट इज अनएक्सेप्टेबल। देखिए मैं आपको समझाऊं कि क्यों ये बहुत पीड़ा होती है पुराने सैनिकों को। 1967 में सिक्किम में नाथुला पे ऐसा ही तमाशा हुआ था, वहां भी तब पहले धक्का मुक्की चलती थी, पहलवान बॉक्सर लेके जाते थे, मार कुटाई होती थी, वापस आ जाती थी दोनों सेना। फिर साहब हमारे वहां पे आए मेजर जनरल, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल भगत सिंह, ये 1971 के युद्ध के बहुत बड़े हीरो, और वो बहुत टफ अफसर थे, बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर थे। जैसे ही वो आए उन्होंने ये तमाशा देखा, उन्होंने बोला साहब ऐसे में धोखा हो सकता है, एकदम से अगर दुश्मन वो बिकम्स काइनेटिक तो आप मारे जाओ, और हुआ भी वही। हम लोग फायर नहीं कर रहे थे, नाथुला में एक बार धक्का मुक्की हुई, जो चाइनीज पॉलिटिकल ऑफिसर था अंबान, उसको बड़ा मुक्का मारा किसी हमारे जवान ने, जाट ने, और वो तिलमिला के नीचे गिरा, तो एकदम से वहां चुप्पी छा गई। वो अपनी फौजों को उसने चाइनीज भाषा में आदेश दिया वापस चलो, वो वापस अपने बंकरों में गए, लूप होल खोले और बोला हटो। अब यहां जो देखिए अब इज्जत का सवाल हो गया, वो जो यंग मेजर साहब थे वो जो अपने जवानों को लेके बाहर गए थे तार लगाने जिसपे चीन विरोध कर रहा था, अब उसने कहा कि मैं हटूं तो लोग सब मेरे जवान सोचेंगे कि मैं डर गया। उसने कहा कैरी ऑन। चीनियों ने फायर खोला साहब, और पहले बर्स्ट में वहां मशीन गन जब चली 80 के करीब हमारे जवान वहां शहीद हो गए और घायल हो गए। ठीक है साहब, इन द फर्स्ट गो। उसके बाद सगत सिंह को गुस्सा आया, उसने आदेश दिए अगर किसी ने इनके साथ हाथापाई करी तो मैं उसे कोर्ट मार्शल कर दूंगा, तुम्हें हथियार दिए हैं हथियारों का इस्तेमाल करिए। और फिर साहब खुल के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, और हमने मीडियम तोपों से, भारी तोपों से फायर खोला, या तुम जो उनकी गैरिजन थी जैसे बोल्डो गैरिजन है, या तुम गैरिजन थी पीछे, वहां गोलाबारी हुई, 650 से 850 तक चीनी सैनिक धराशायी हो गए, मारे गए, और 53 साल शांति रही। मेरा सरकार से निवेदन है कि साहब अगर आप वाकई शांति चाहते हैं, ये धक्का मुक्की ये हर साल का सालाना तमाशा नहीं देखना चाहते, तो आपको वही करना होगा जो 1967 में किया था। आपने हाइट्स पकड़ ली है, आपकी सेना ने आपको एडवांटेजेस पोजीशन दिला दी है, अब यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट एडवांटेज इनटू अ काइनेटिक एक्शन ताकि चीन को कीमत बढ़े। देखिए प्लीज समझिए, 22 साल से हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बॉर्डर के बारे में बातचीत कर, अभी तक चीन से हमने बोला साहब अगर बॉर्डर की बातचीत करनी है आपका परसेप्शन एलएसी का कहां है, आप हमें मार्क मैप्स तो दीजिए, गिव अस द मार्क मैप। 22 साल हो गए नहीं दिए, क्या सर खाक आप बातचीत करेंगे? जब मुझे आपका परसेप्शन ही नहीं मालूम, यार तुम कहां समझते हो कहां है बॉर्डर, तो मैं अपना बताऊं फिर बातचीत होती। वो बॉर्डर सॉल्व करना ही नहीं चाहता, लेकिन हर साल वो बॉर्डर की एम्बिग्युटी का इस्तेमाल करके आपको तंग करना चाहता है, और ये कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। 2013 में चुमार, 2014 में देपसांग, 2017 में डोकलाम, और 2020 में तो साहब माशाल्लाह हो गया, और जगह पूरा ईस्टर्न लद्दाख एक्टिवेट।
सर ये एक सवाल आ रहा है, अब दो रूट सामने हैं, क्योंकि मैं इस पे कुछ स्टडी कर रहा था तो सम ऑफ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स वो बोलते हैं दैट वी नीड टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट लेवल टॉक, सम सेड जो फॉरेन मिनिस्टर की तो हो भी गई है, तो एक रूट है टॉक्स का एट द हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल, दूसरा वे है जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी हाइट्स हैं हम उस पे अभी रुके रहे, पर वो विंटर्स आएंगी तो वो कह रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल प्रोपोजिशन है, कारगिल में हमें अभी भी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है जो हम पहले एक टाइम पे बिफोर द कारगिल एपिसोड नहीं करते थे। सो सेकंड दे इज द फीजिबिलिटी ऑफ हाउ लॉन्ग कैन वी स्टे एट दीज हाइट्स, एंड द थर्ड एंगल दे से इज जैसे आप कह रहे हैं व्हिच सम वुड कॉल अ हॉकिश व्यू कि आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं और इसको आप अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए या डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज कीजिए। सो व्हाट एज पर यू एज आई एम आस्किंग एज अ ओवरव्यू, what are the positive or negative of any of these three strategy if you talk
excellent,
if you say or you do kinetic all three
of them dekhiye iskaran what I want to tell you is ki talks aapne kab talk roki hai, main bata raha hu 22 saal se lagatar talks chal rahi, 1993 agreement ho gaya, 1996 agreement ho gaya, 2005 ho gaya, 2013 ho gaya, fir वुहान स्पिरिट और फिर वो महाबलीपुरम का स्पिरिट और ये स्पिरिट और वो स्पिरिट। देखिए अभी तक टॉक करते करते तो हमारे वी हैव गॉन ब्लू इन द फेस, अभी डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे टॉक हो गई, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे टॉक हो गई, आप जहां मर्जी तक टॉक कर लीजिए, अगर उसका इंटेंशन नहीं है सुलझाने की तो आप करते रहिए। वो चीन की पॉलिसी है नेगोशिएट एंड निबल, नेगोशिएट एंड निबल, बातें करते रहो और हड़पते रहो, जो है फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स डीपर, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने पकड़ लिया पकड़ लिया, रोते रहो, टॉक करते रहो टॉक करते रहो। देखिए साहब अभी तक चल रहा था, यू सी व्हाई 53 इयर्स पीस हैज हेल्ड, हम भी खुश थे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हम सारी शक्ति पाकिस्तान के खिलाफ लगा सकते थे। यू सी जब ये इनिशियल अकॉर्ड हुआ था उस वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर का तमाशा शुरू किया, हम चाहते थे जो हमारे ट्रूप्स पूरी विंटर में वही रहते थे और फिर उसको आपने विंटर क्लोथिंग देनी, विंटर स्टॉकिंग करनी, केरोसिन ऑयल स्टॉक करना, अरे साहब एम्बुलेंस पहुंचाना, रसद पहुंचानी, बीमारों को वापस लाना, तो चोट खाए लोगों को वापस लाना, बहुत भारी एक्सपेंस। जब हमारा डी एस्केलेशन हुआ, चीन भी डी एस्केलेट चाहता था, हम भी डी एस्केलेशन चाहते थे, इट सूटेड बोथ ऑफ अस, तो तब साहब हमने कर लिया, अपने ट्रूप्स विड्रॉ किए और जो चीन के बॉर्डर वाले थे हमने कश्मीर में लगाए, तब जाके कश्मीर संभला, ठीक है साहब, बिकॉज दैट फोर्स वी वर एबल टू डू दैट। अब साहब जो है स्थिति बदल गई है, क्योंकि उस वक्त भारत और चीन का जीडीपी ऑलमोस्ट बराबर, भारत और चीन का डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट बराबर था, हम चीन के बराबरी थे। अब चीन का जीडीपी हमसे 5 गुना ज्यादा है, चीन का डिफेंस एक्सपेंडिचर हमसे 4 गुना ज्यादा है, हमारा 72 अरब डॉलर है एवरी ईयर, चीन का 272 डॉलर है एवरी ईयर, 4 times एग्जैक्टली आर एक्सपेंडिचर। इसलिए चीन को लग रहा है साहब कि अब हमारी ताकत में एसिमेट्री आई है और मैं भारत को धकेल सकता हूं, जो उसने देखा कि भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह से आड़े हाथ दिया है, ठोका है उड़ी में, ठोका है बालाकोट में, और पीओके लेने की अब धमकी जो दे रहा है, तो उसको लगा कि मैं जरा अपने जो मेरा हायर देन द माउंटेन्स डीपर देन द सीज रिलेशनशिप जो पाकिस्तान के साथ है इसकी कुछ हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की तो जंग बैठ गई थी बालाकोट के बाद। याद रहे जब 370 आपने हटाया पाकिस्तान ने जीरो किया जीरो। अब पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए चीन ने यह तमाशा किया है।
बख्शी, आपने ये 370 की जो बात की ये बहुत जरूरी है। मैंने भी पूछ सोचा था आपसे सवाल पूछूंगा। ये जो आप सब देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, इज इट अ फॉल आउट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू अबॉलिश आर्टिकल 370, उससे कनेक्टेड है, या आपके ख्याल से ये उससे कोई ले, जो चाइना चाइना का अग्रेशन है, क्योंकि आपने सही कहा कि पाकिस्तान साइड से कुछ नहीं हुआ है
बिल्कुल
तो
कुछ नहीं हुआ है। और पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए देखिए चीन का स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है, फाइट इंडिया टू द लास्ट पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान फाइट इंडिया टू द लास्ट कश्मीरी, खुद नहीं लड़के कश्मीरियों को लड़ाएंगे, उसी तरह चीन का भी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है। हम क्यों लड़े, तुम पाकिस्तान से लड़ते रहो, हम उसको हथियार देते रहेंगे, प्रोत्साहन देते रहेंगे। उसने देखा पाकिस्तान की जंग बैठ गई, तो व्हाट इज द वे टू इनकरेज पाकिस्तान, ये नहीं करे जाओ करे जाओ, मैं हूं ना। और वो हमारे पे चढ़ा है साहब, वो हमारे पे चढ़ा है ये सोच के कि मैं डरा धमका के भारत के ठंडे पसीने निकाल दूंगा। बट ही डिड नॉट बार्गेन फॉर द फैक्ट दैट इंडिया इतना स्ट्रांग कम बैक दे, इतना स्ट्रांग कम बैक देगा। उससे थोड़ा चीन भी सक पका गया है, शी जिनपिंग साहब सक पका गए हैं, दादागिरी चलने निकले थे ये सोचकर कि जैसे फिलीपीन डर गया, फिलीपीन छोटा सा देश है, उसको डरा दिया आपने, वो बेचारा कोर्ट केस जीत गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तभी भी डरा धमका के उसके इलाके पे आप हावी होने लगे। लेकिन भारत फिलीपीन नहीं है, छोटा देश नहीं, लेने के देने पड़ सकते हैं, और 1962 का भारत नहीं।
पर सर, ये आपने जैसे कहा कि एक टाइम पे हमें अपना सब कुछ कश्मीर ले जाना था, तो इट सूटेड बोथ द साइड्स। आज नेपाल के साथ भी थोड़ा तनाव है, अब चाहे हम रीजन कुछ भी बोलें उसका। पाकिस्तान के साथ तो तनाव परपेचुअली है, और चाइना भी, एंड आपका ही मैं बात कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं कि उनकी इकोनॉमी भी हमसे 4 या 5 गुना ज्यादा है, एंड गॉड इज ऑन द साइड ऑफ द नेशन विद मोर स्टील, ये शुरू से। सो इन दैट सिचुएशन जो आप कह रहे हैं काइनेटिक होना चाहिए, डू यू थिंक वो फीसिबल या वाइबल है, या क्योंकि पाकिस्तान को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, इट विल नॉट बी अ क्वाइट वन। चाइना की जीडीपी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, इस सिचुएशन कैन वी डू वी हाइपर बोल छोड़ दें, रियलिस्टिक ओल्ड कैलकुलेशन, कैन वी अफोर्ड वो काइनेटिक?
एब्सोल्युटली वेरी गुड क्वेश्चन। इस कारण लेट मी बी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड गिव यू सम मिलिट्री लॉजिक। जी चीन का जीडीपी 5 गुना बड़ा है, चीन का डिफेंस एक्सपेंडिचर 4 गुना बड़ा है, लेकिन चीन को अमेरिका को संभालना है, जापान को संभालना है, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, ताइवान को भी संभालना है, ठीक है साहब? सो व्हाट ही कैन डिप्लॉय अगेंस्ट यू इज एक्सट्रीमली लिमिटेड, इज वेरी मच कर्टेल्ड, और हम उसकी बराबरी क्या उससे ज्यादा कर सकते हैं? हम जो है हिमालयन थिएटर में उससे इफ नॉट स्ट्रॉन्गर एज स्ट्रॉन्ग है। हमारी एयरफोर्स को अभी एज है इस थिएटर में, याद रहे वो हाई एल्टीट्यूड की एयरफील्ड से ज्यादा बॉम्ब लोड लेके नहीं उड़ सकता पतली आवाज में, वो पतली हवा जो है, ठीक है साहब? और इसके चलते भारत को माउंटेन वॉरफेयर में एडवांटेज है इस वक्त।
पतली हवा, सॉरी आप क्या थोड़ा लेमैन के वे में एक्सप्लेन करेंगे पतली हवा?
ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। चीन की सारी एयरफील्ड जो है 14, 15, 16 हजार फुट की हाइट पे है, जहां हवा पतली होती है। जब हवा पतली होती है तो एक तो जहाज को टेक ऑफ करने के लिए ज्यादा लंबा रन करना पड़ता है, दूसरा वो ज्यादा बॉम्ब लोड लेके टेक ऑफ नहीं कर सकता, ज्यादा फ्यूल लेके टेक ऑफ नहीं कर सकता, मतलब वो चाहे कितने अच्छे से अच्छा जहाज हो उसको डिसएडवांटेज रहेगा आपके जहाज जो समुद्र तल से उठ रहे। इसी आर एयरफील्ड इन द प्लेन ऑफ पंजाब, वो तो समुद्र तल पे है, बरेली, यूपी, आसाम, वो तो समुद्र तल के ऑलमोस्ट आसपास 600-800 फुट पे है, हमारे जहाज पूरा बॉम्ब लोड पूरा फ्यूल लेड लेके उड़ सकते हैं, उसके आधे से भी कम उड़ सकता है। जितने भी वो जहाज लगाए उसको डबल जहाजों की जरूरत है। अभी वो इतने जहाज पैर नहीं कर सकता, तभी मैं कह रहा हूं द ओवरऑल कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस टुडे इज इन योर फेवर। पूरी दुनिया इस मुल्क से तंग है। 130 देशों ने कहा कि चीन के खिलाफ इंक्वायरी हो कोविड को लेकर। अमेरिका परेशान, ताइवान परेशान, जापान परेशान, वियतनाम और सारे साउथ ईस्ट एशियन मुल्क परेशान। इस वक्त सारी दुनिया आपके साथ। 2-3 सालों में क्या हालत होगी मैं नहीं कह सकता। यू मे रिग्रेट, ध्यान से सुन लीजिए, यू मे रिग्रेट लूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तब तक उसके उसके वहां पे साफ बंकर नहीं है, उसकी एयरफील्ड में कॉन्क्रीट ब्लास्ट पेज नहीं है। हमारी एयरफोर्स जाके उसको जिस तरह भूत कर सकती है आज के तक। और अगर आप 62 का जवाबदारी उसको देना चाहते हैं वापस, दिस इज द बेस्ट टाइम। 42 साल हो गए हैं चीन की फौज को लड़े, और जो आखिरी लड़ी थी वियतनाम के खिलाफ, दे गॉट अ ब्लडी, तजुर्बा नहीं है लड़ाई का। ये वो फौज नहीं है जो 62 में आई थी, जो लगातार 35 साल से लड़ रही, माहिर थी। और हमारी फौज को उस वक्त जंग लगा हुआ था पंचशील का और अहिंसा का, नेहरू जी का दिया हुआ जंग, तभी हम मार खाए थे। लेकिन हम उस मार से बहुत सीखे, बहुत संभले, बहुत समझे, और आज द बूट इज ऑन द अदर लेग। वी आर मोर कॉम्बैट हार्डेड। माउंटेन वॉरफेयर में हिंदुस्तान की फौज का सानी नहीं है दूसरा, ये चीन के जर्नल कह रहे। और जहां तक वो हाइट्स पे ठहरने का सवाल है, हम 21,000 की सियाचिन की हाइट्स पे सारा साल ठहर रहे, तो ये 16,000 क्या है? अगर हम सियाचिन पे ठहर सकते हैं, हम 16,000 पे ठहर सकते हैं। हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं, लेकिन लगातार आपको वहां ट्रूप्स मेंटेन करने पड़े तो आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। एक साल का मामला नहीं है, 30 साल की सोचनी पड़ेगी आप। इसलिए इट मे बी बेटर टू हैव अ काइनेटिक शार्प शॉर्ट शार्प एंगेजमेंट एंड यू नो गिव अ क्लियर सिग्नल टू चाइना कि देखिए साहब, आपको बॉर्डर सॉल्व करना पड़ेगा। कि बॉर्डर छोड़ो, पड़े ट्रेड करते रहो जिसमें कि 60 बिलियन एडवांटेज हमको हो, ये हिसाब अब नहीं चलेगा। क्योंकि आप इतने आक्रामक तेवर लेके आ गए हैं, आपने हमारे 20 जवान मार दिए, शहीद किए हैं, अब साहब बिजनेस एज यूजुअल तो नहीं, बिजनेस एज यूजुअल नहीं।
दो एक मुझे सिर्फ एक इस पे क्वेरी करनी है कि यूएस एक नोटोरियसली फिकल नेशन रहा है, ट्रंप से पहले भी, फॉर इंडिया ट्रंप से पहले भी, ट्रंप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिसका सुबह कोई व्यू होता है प्रेसिडेंट ट्रंप का, शाम को कोई और हो जाता है, उनको एक सेकंड के लिए छोड़ दें। एज अ पॉलिसी, एज अ डीप स्टेट जो यूएस में बहुत इंट्रेंच्ड है वो बहुत, और चाइना को अब रशिया से प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इफेक्टिवली दे कंट्रोल रशिया, तो उनको वो थ्रेट उनका न्यूट्रलाइज हो चुका है। उस सिचुएशन के अंदर डू यू स्टिल थिंक कि हमारे पास काइनेटिक जाने का ऑप्शन रहेगा? क्योंकि अभी वैसे यूएस ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज करने के लिए हाल में, इंडिया ने साउथ चाइना सी पे भी, आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा, पर उससे पहले डू यू रियली थिंक कि हम यूएस पे रिलाय कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन, या यू थिंक दैट विल बी अ मिस्टेक? न्यूट्रल तो रहेगा बट क्या सपोर्टिव आपको लगता है हो सकता है इन द ग्लोबल सिचुएशन एज यू सी?
देखिए आप क्या हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से? आप समझते हैं कि हम मांगेंगे कि अपने सिपाही भेजो? हमको लड़ना नहीं आता, वी डोंट नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड। हमारी सेना, एयरफोर्स, नेवी काफी है चीन के दांत खट्टे करने के लिए। वी डोंट नीड ट्रूप्स और बूट्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है साहब? थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वॉन्ट इट। We are capable of taking care of ourselves. हम जो चाहते हैं कि चीन की जो फौजें हैं उनको वो दबा के रखे, एंगेज रखे, वहां से साउथ चाइना सी से ताइवान के आगे से हमारी तरफ ना आने। That's all that we need the United States for. एंड इफ दे कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। उन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर दिए, अपाचे हेलीकॉप्टर दिए आपको, पोसाइडन मैरिटाइम रेकी एयरक्राफ्ट दिए, अभी आपको वो अनाम आर्म ड्रोन देने वाला है, वो ट्रिपल सेवन होविट्जर आपको लाइट वेट टाइटेनियम वो सप्लाई कर रहा है, जो आप मांग रहे हैं दे रहा है, वही चाहिए, दैट्स ऑल दैट वी नीड। बाकी किसी का ये कहना कि साहब जैसे 1962 जैसे जैसे नेहरू जी बुला रहे थे, आओ बचाओ, बकवास, वो नहीं होगा साहब।
यूएस
बिग एनफ टू टेक केयर ऑफ आवर
सेल्फ, अपनी वॉर के लिए बॉडी काउंट नहीं अफोर्ड करता तो किसी और की वॉर,
तो हमारी क्या वॉर में वो अफोर्ड करेगा, क्या वो करेंगे हमारे लिए साहब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल दैट वी नीड इज, वी नीड अ सीरीज ऑफ नेशंस हु आर स्ट्रेटेजिकली ऑन द सेम पेज, एंड जापान के साथ बहुत जरूरी है हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने। अगर एशिया में आप एक पावर बैलेंस करना चाहते हैं तो केवल दो देश हैं जो पावर बैलेंस ला सकते हैं एशिया में, जापान, इंडिया, और तीसरा पोल है वियतनाम, और अगर साउथ कोरिया भी बीच में आ गया सोने पे तो आ गया, ज्यादा इन्होंने तंग किया, ताइवान को भी आप साथ ही, वो है साथ आप,
वो है,
यू सी, सो देयरफॉर द कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस, व्हाट यू हैव टू सी द ओवरऑल मैथमेटिक्स, एंड देन वी हैव टू डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या मैं 30 साल तक 60 से 70 हजार ट्रूप ईस्टर्न लद्दाख में चढ़ा के रखूं, विंटर समर रेन 24/7 360, ठीक है साहब, क्या कॉस्ट होगा, और हर साल तमाशा हो, या है साहब कि कब ये एक बारी साहब खलास कर दिया जाए, एक बारी हो जाए, ताकि आपको चीन को पता चल जाए, साहब देखिए ये मजाक नहीं है कि आप कभी आयरन रॉड लेके आ रहे हैं, कभी बेसबॉल बैट पे तार बांध के ला रहे हैं, That joke is over. ये दो देश हैं, संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, एंड मजाक नहीं है, आप जरूरत से ज्यादा धक्का देंगे, हमने नहीं, we haven't started. हमने बातचीत की हर संभव कोशिश की, सुलझाने की हर संभव कोशिश की, इसके बाद भी अगर आप युद्ध चाहते हैं तो वो न्याय संगत युद्ध होगा, जैसे महाभारत में बोले साहब 5 गांव दे दो, 1 गांव दे दो, नहीं तो अब युद्ध होगा, then it is जस्ट वॉर।
साहब मैं एक मिनट ऑडियंस का क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ, ऑडियंस मुझसे पूछ रही है मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में क्या बोलता हूँ। आई थिंक रिपब्लिकन्स टुडे आर बेटर देन डेमोक्रेट्स, बट जब मैं ये कह रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह और शाम व्यू चेंज होता है, तो मेरा यही बोलने का मतलब है जो जनरल बख्शी भी कह रहे हैं कि हमें अपने पे रिलाय करना है, आप इस पॉलिटिक्स में मत पड़िए कि यूएस में क्या हो रहा है, वो जो एनआरआईज हैं वो अपने आप अकलमंदी से वोट करेंगे, बट वी हैव टू बी रेडी दैट हमें अपने आप को डिफेंड करना है। तो कुछ लोग यहाँ पे चाइना, ट्रंप और बाइडेन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी नॉट कमेंटिंग ऑन ट्रंप और बाइडेन, अनलेस बख्शी साहब वांट्स टू कमेंट ऑन दैट। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हमें अपना देखना है, तो आप प्लीज ये मत पूछिए कि हम ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप ना भी हो, यूएस की राजनीति अपने नेशनल इंटरेस्ट में होगी, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगी, उनको सूट करेगा तो वो सपोर्ट करेंगे।
और देखिए साहब इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स में भी बाइपार्टिज़न कंसेंसस है कि भाई चाइना उनकी अब सबसे बड़ी थ्रेट है, मोर देन रशिया, क्योंकि चाइना के पास वो इकोनॉमिक पावर है जो रूस के पास कभी नहीं थी, टू बैलेंस आउट, मिलिट्री पावर बहुत थी बट मिलिट्री पावर विदाउट इकोनॉमिक पावर, 1990 में सोवियत यूनियन कोलैप्स विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। लेकिन चाइना अब इकोनॉमिक नंबर टू इकोनॉमी है दुनिया की, और गिविंग द यूनाइटेड स्टेट्स अ रन फॉर द मनी, अमेरिका भी जानता है कि साहब अब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हमने गलती करी चीन को इतना ऊंचा उठाते, वो चाहते थे चीन काउंटरवेट बने रशिया का, आज वो दोनों देशों को आपने दोनों को दबाव डाल के दोनों को इकट्ठा कर दिया। लेकिन फिर भी गुड न्यूज इज कि रशिया इज स्टिल सप्लाइंग यू, आपने 30 जहाज मांगे Su-30 MiG-29 एट फास्ट ट्रैक, वो दे रहा है, S-400 के डिजाइन स्पीड अप कर रहा है, चीन ने कहा मत दो, उसने इनकार कर दिया साहब, क्योंकि उसको भी एट द एंड ऑफ द डे चीन से खतरा है, वो खतरे, वो बहुत रियलिस्ट लोग हैं, वो बिल्कुल चाहे अभी टेम्पररी उनके हो यू नो शेयर्ड इंटरेस्ट, लेकिन ज्यादा लंबे तौर पे वो कभी चीन को ज्यादा ताकतवर होते नहीं देखना चाहेगा, इसीलिए वो भारत को हमेशा काउंटरवेट बना के रखता था कि थोड़ा सा चीन को चेक में रखा जाए, थोड़ा सा चीन को चेक में रखा जाए। वो बहुत रियलिस्ट लोग हैं रूसी लोग, और वो हमको हथियार दे रहे हैं। अब हमको अपने हथियार बनाने चाहिए। और अगर देखिए चीन से झड़प होती है तो मैं बोलूंगा कि ये जो 62 का तमाशा कि हम सिर्फ फौज से लड़ेंगे, हम सिर्फ पत्थर और लाठी से लड़ेंगे, ये बकवास नहीं हो सकता। हमारी एयरफोर्स भी आएगी, हमारी नेवी भी आएगी, और सबसे बड़ा एडवांटेज भारत की नेवी को है कि हम मलक्का का चोक पॉइंट चोक कर सकते हैं। सारा जो ट्रेड है, जो ऑयल है, वो हम चोक कर सकते हैं मलक्का के बॉटल नेक के ऊपर, मलक्का के चोक पॉइंट पे।
जनपक्षी, मैं यही इस पे थोड़ा आप एक्सप्लेन करके मैं इस पे ही आना चाहता था। साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट्स, नेवी, इसके ऊपर आप प्लीज, अगर अगर ये जैसे आपने कहा एस्केलेट होता है, आजकल तो साइबर वॉरफेयर भी होगा, हमने एप्स भी बैन किए हैं, पर नेवी का रोल आप कैसे देखते हैं? आर वी, क्योंकि चाइना के पास हमसे बहुत ज्यादा बड़ी नेवी है, एक ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव पैक्ट में हाउ डू यू सी साउथ चाइना सी, ईस्टर्न इंडियन ओशन, ये सारा का आप कैसे देखते हैं अगर टेंशन बढ़ती है? क्योंकि अभी भी गलवान के बाद इंडिया ने अपना एक कैरियर भेजा है साउथ चाइना सी, और यूएस ने दो भेजे, सो हाउ डू यू सी द साउथ चाइना सी, ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सेट्रा प्लेइंग?
इस करंट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी, चार एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप वेस्टर्न पैसिफिक में भेजे हैं, जिनमें से दो साउथ चाइना सी में आए हैं, और उनमें से एक मलक्का स्ट्रेट्स के थ्रू होके अंडमान सी में आके हमारी नेवी के साथ एक्सरसाइज करके गया है। जापान का भी जहाज हमारे साथ एक्सरसाइज कर चुके हैं, ठीक है साहब। अभी जो है क्वाड की एक्सरसाइज होने वाली है, इसमें इंडिया, जापान, अमेरिका और अब तो शायद ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करेगा, ये सब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चीन की नेवी आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन चीन की नेवी को अमेरिकन नेवी से निपटना है, जापान की नेवी से निपटना है, ठीक है। और वियतनाम जैसे बहादुर देश भी है, चाहे इतनी बड़ी नेवी ना हो, बट वो दांत खट्टे कर सकते हैं। जैसे उन्होंने 79 में अकेले वियतनाम ने अकेले लड़के चीन के दांत खट्टे किए, मत भूलिए ना। रूस आया था, अमेरिका तो उस वक्त दुश्मन था इसका, बिल्कुल ठीक है साहब। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में जो गांधीयन एक तबका है, ये ऐसे ही कबूतर उड़ाने वाला तबका डराता रहता है। ये तो पाकिस्तान से भी नहीं लड़ने देना चाहते थे, 26/11 के बाद जीरो किया इन लोगों ने, न्यूक्लियर युद्ध, न्यूक्लियर युद्ध, न्यूक्लियर युद्ध। अरे साहब, 3 महीने कारगिल का युद्ध चला, इतने बॉम्ब दिल्ली पे गिरे, ये सब बकवास है, इधर भक्की है, ठीक है साहब। और अभी भी लोग डरा रहे हैं आपको, जब आप किसी टेलीविजन डिस्कशन में बात करें तो आधे जो हमारे सिविलियन एक्सपर्ट है वॉर भी छोड़ो, और वो जैसे कि गश खा के गिरने को तैयार हो जाते। अरे साहब, ऐसी बात नहीं है, इट इज नॉट 62। आप भरोसा रखिए अपनी सशस्त्र सेनाओं में, हम बेवजह लड़ना नहीं चाहते, वी आर नॉट आस्किंग लुकिंग फॉर अ फाइट, बट अ फाइट इज बीइंग थ्रस्ट ऑन अस, देन वी बेटर गिव इट बैक, then we might as well give it back, because हमने सब कोशिश कर ली। 22 साल से बातचीत कर रहे हैं, 22 साल, और जब से ये चालू हुआ है तो डेली बातचीत हो रही है साहब, फौज के दर्जे, डिप्लोमेटिक दर्जे, पॉलिटिकल दर्जे, डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत, फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत, हमारे NSA ने उनसे बात कर ली है अपने इक्विवेलेंट से। अब साहब रह क्या गया, प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग साहब की कितनी बारी बातचीत हो गई है, और वो बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए जाते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद फिर लड़ाई होती। तो साहब आई थिंक वी विल हैव टू मेक अ कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन, कोल्ड ब्लडेड कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन कि साहब वुड इट बी, क्या हम एक लॉन्ग विंटर के लिए प्रिपेयर करें? मेरा कहना है कि एक लॉन्ग विंटर नहीं, 30 लॉन्ग विंटर के लिए रेडी रहना पड़े, नंबर एक। नंबर दो, क्या एक लिमिटेड काइनेटिक, मतलब जैसे कि 67 अला 67, क्या वो पॉसिबल है, या लिमिटेड काइनेटिक अला कारगिल, दो डिवीजन, क्या वो पॉसिबल है? हम कहां तक जाना चाहते हैं, चीन कहां तक जाएगा, और भारत और चीन में युद्ध हुआ तो जिस तरह गीदड़ या सियार या हाइना जब दो शेर लड़ रहे होते हैं पीछे से दुम काटने की कोशिश करता है, पाकिस्तान जरूर ट्राई करे, लेकिन पाकिस्तान को यह याद रहना चाहिए कि उसके बाद जो उसका हश्र किया जाएगा
वो शायद रहे ना रहे उसको ये भी सोचना होगा।
बख्शी साहब, अब मैं दो चार लोगों के क्वेश्चन लूंगा क्योंकि वो पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया को नेटो जैसे कोई अलायंस ज्वाइन करने की संभावना है? सर आपका फ्रेम टेढ़ा हो गया है, आप जनता अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं पूछना शुरू कर रहा हूं।
जी
सर, एक क्वेश्चन ये आया है कि शुड इंडिया ज्वाइन अ नेटो लाइक अलायंस, क्या इंडिया ज्वाइन कर सकती है, वो लेंगे या इसके बारे में आपको क्या लगता है, कुछ सोचने की जरूरत है नहीं है?
देखिए, आप मोरलेस ऑलरेडी
एक क्वाड अलायंस में हो, इट मे नॉट बी कॉल्ड एन अलायंस क्योंकि हमको हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को नॉन अलाइनमेंट से बड़ा प्यार है। देखिए, ऐसे टाइम में नॉन अलाइंड होना उससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती थी। जब रूस और चीन, रूस और अमेरिका का झड़प थी तो आप नॉन अलाइंड हो सकते थे, ये दोनों आपसे दूर थे, चीन आपकी सीमा पर है, आपसे युद्ध कर चुका है, जितना चीन ने आपको तंग किया है शायद किसी और देश ने किया हो। पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब किसने दिए? चीन ने। पाकिस्तान को टैंक, जेट फाइटर, तोपे, सबमरीन, वॉरशिप किसने दिए? चीन ने। नेपाल को कौन उकसा रहा है? चीन। बांग्लादेश को कौन उकसा रहा है? चीन। मालदीव को हथियाने की कोशिश कर रहा है? चीन। तब उसने आपके नाक में दम करके रखा है और आप कह रहे हैं आप नॉन अलाइंड होंगे। अभी तक तो चल गया 53 साल, क्योंकि दोनों के हित में था कि एक फ्रंट डॉर्मेंट रहे, लेकिन अब जब चीन आमादा है इस फ्रंट को डॉर्मेंट करने का और वो सारे फ्रंट इकट्ठे डॉर्मेंट करना इकट्ठे एक्टिवेट करना चाहता है, तो ये तो चीन का लुकआउट है। हमने कब से ठेका ले रखा है कि साहब शी जिनपिंग साहब की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, वी शुड नॉट लूज फेस। वो हमारे को तो नाक काटना चाहते हैं और हमारे देश में तबका है कि साहब चीन शुड नॉट लूज फेस। अरे हमने ठेका ले रखा है।
एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जितेंद्र पूछ रहे हैं, ही सेज के हमारी इतनी रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी क्यों है हांगकांग के ऊपर, जो हांगकांग में सप्रेशन हो रहा है, कैन यू हियर मी? हांगकांग,
यस सर,
ये जो हांगकांग में सप्रेशन हो रहा है या जो कर रहे हैं मिनोरिटी के साथ, तो उसके ऊपर हम क्यों एक नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर पॉइंट नहीं बनाते, या हांगकांग पे या उगर पे हम बोलते ही नहीं है, क्यों नहीं हम बोलते हैं?
देखिए, हमारे देश में पिछले 53 सालों में एक बहुत प्रो चाइना लॉबी आ गई, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो चाइना लॉबी की, डोंट अनॉय चाइना, और हमसे सीखो कैसे कोटो किया जाता है, कैसे चीन को खुश किया जाता है, कैसे चीन का मस्का लगाया जा सकता है, ये इनसे सीखे कोई। ये प्रो चाइना लॉबी ने काफी, अब जरा जरूरत से ज्यादा, एक टाइम पे ठीक था जब दोनों के लिए इट वॉज बेनिफिट, अब साहब बेनिफिशियल नहीं, अब तो वो सिर पे चढ़ रहा है। तो अब जो है आपको, यू विल हैव टू गिव, लर्न टू बी एबल टू गिव इट बैक एंड प्रोटेक्ट योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आपके भी बहुत सारे कार्ड हैं, तिबेट कार्ड है, ताइवान कार्ड है, आप हांगकांग कार्ड है, शिंजियांग कार्ड है, आप ये सारे प्ले कर सकते, आप ये सारे प्ले कर सकते, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं, नहीं साहब चीन नाराज हो जाएगा, नाराज है। अब साहब नाराजगी जाए भाड़ में, आप मेरी ऐसी तैसी कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू मेक मी सफर एवरी विच वे पॉसिबल, मतलब मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो, हर किसी तरह से मेरे को घेरने की कोशिश कर रहे हो, और शांति का ठेका मैंने ले रखा है कि शांति का ठेका केवल और केवल भारत के सारे की साहब जो कुछ हो जाए हम शांति भंग नहीं होना चाहे देंगे, हम गांधी की औलाद है। तो साहब ये फिर ये गांधीगिरी आपको महंगी पड़ जाएगी, आप अपने राष्ट्र हित सरेंडर नहीं कर सकते।
सर, ये जो आपने कहा तिब्बत और चाइना पे, डू यू थिंक हमारे पास तिब्बत पे कोई कार्ड्स बचे हैं? बिकॉज एग्रीमेंट आफ्टर एग्रीमेंट हम कर चुके हैं तिब्बत के ऊपर कि चाइना का वो बेसिकली हिस्सा है, और फ्री टिबेट प्रोटेस्ट्स होती रहती हैं, बट डू यू थिंक वी हैव एनी कार्ड्स टू प्ले देयर, या इट इज समथिंग वी हैव, इट इज इनटू द एनल्स ऑफ हिस्ट्री एंड हमारे पास कुछ है? ताइवान पे तो ऑप्शंस हैं, हम कुछ कर सकते हैं अगर करना है। तिब्बत पे आपको लगता है कुछ ऑप्शंस हैं या इट इज
साहब? देखिए तिब्बत पे ऑप्शन जब होंगे, अभी जो पहला ऑप्शन है कि आपके जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स जिन्होंने जाके सारा इलाका पकड़ा है पंगोंग से साउथ में, वो तिब्बती, तो दे आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ तिब्बत, और एक संकेत तो जा ही रहा है जो तिब्बत में उनके भाई, ठीक है साहब, कि हमारे ट्रूप्स बॉर्डर पे आ गए, ठीक है हमारे भाई बंद बॉर्डर पे आ गए। अगर चीन बिहेव नहीं करता, अगर वो युद्ध पे आमादा होता है, लिमिटेड वॉर पे आमादा होता है, या 24/7 टेंशन रखने पे आमादा होता है कि आपकी इकोनॉमी का हट्टा बिठाया जाए, आपको वहां लगा के बिठा के 16,000 फुट पे, देन आप फिर ये एग्रीमेंट क्यों लागू रहे? दे आर नॉट कास्ट इन स्टोन, एंड नेशनल इंटरेस्ट टेक प्राइमेसी ओवर चाइनीज इंटरेस्ट, आर नेशनल इंटरेस्ट टेक प्राइमेसी ओवर चाइनीज इंटरेस्ट। अगर चीन जो है पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है मसूद अजहर को टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर करने दिया जाए, यू नो, और वो वहां पे एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर फैसिलिटी बनाई है पाकिस्तान, जहां पे एंथ्रेक्स बना के उसके टेररिस्ट हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर, हर किस्म से आपको दुख क्लेश देने के लिए चीन कार्रवाई कर रहा है, आपने ठेका ले रखा है शांति शांति शांति, हम बचा के रखेंगे शांति, रैबिट निकाल लेंगे हैट से।
जनरल बख्शी, एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि एक राहुल ने भी पूछा है कि एक अमन की आशा जो ब्रिगेड है या प्रो चाइना प्रो पाक ब्रिगेड है, जैसे आपने कहा गश खा के गिर जाएंगे, यू थिंक दैट इज कैसे बोलूं, मोटिवेटेड स्पॉन्सर्ड ब्रिगेड या स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान चाइना ब्रिगेड, या जेन्युइनली ही डॉब्स हैं और इनका माइंडसेट ही ऐसा है, और अगर प्रो स्पॉन्सर्ड हैं तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन टू दैट?
देखिए इसमें दो किस्म के लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सारे के सारे बिके हुए हैं, मैं कहता हूँ कई इनमें से बहुत जेन्युइन पीस मिक्स भी है, जिनको कि रशियन कम्युनिस्ट कहा करते थे यूजफुल इडियट्स, कि दूसरे देश में अगर ऐसे लोग बड़े यूजफुल होते हैं, ऐसे इडियट जो कि नोबेल पीस प्राइज के स्वप्न लेकर तो अपने देश की तबाही करा दे। देखिए ये जो था अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, बड़ा भारी रशियन राइटर था, उसको नोबेल पीस, उसको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया, और उसके बाद उसने सोवियत संघ के बरखिलाफ दिल खोल के बातचीत शुरू की, वो तो पैसे लेके बैंक में चला गया लेकिन सोवियत संघ नहीं रहा साहब। तो ऐसे यूजफुल इडियट्स भी हैं, और माफ कीजिए एक और तबका है जो कि पैसे के लिए बिकने को तैयार, और चीन पैसा खर्चने के लिए मोर देन विलिंग है, वो तो 10% तक खर्चा करने को तैयार है कि साहब, वो तो हर डील में 10% तो ब्राइब होती ही होती, बड़े मतलब उनकी बिजनेस ही इसके ऊपर है, बिजनेस प्रिंसिपल है उनका, कितने सारे थिंक टैंक, देखिए हमारे लोग किस चीज पे बिकाऊ हो जाते हैं कि मैं साहब एक शंघाई में सेमिनार कर रहा हूं, बिजनेस क्लास टिकट दूंगा, 5-7 star होटल में रखूंगा, फ्री दारू, फ्री दिस, फ्री दैट, और आप बिक जाते हैं साहब इतनी चीज के लिए, उसके बाद से आप चीन की पैरवी, चीन की खुशामदी, चीन के हित में बोलना, अब यहां तक अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का उनके साथ पार्टी टू पार्टी रिलेशन हो गया, उन्होंने इतने डॉलर दिए, इतने पैसे दिए, इतने ये दिए वो दिए, खैर इस पे तहकीकात हो रही है, लेट दैट बी चेक आउट, बट प्राइवेट दर्जे पे बहुत सारे हमारे लोग हैं, आपको याद होगा वो पाकिस्तान का था एक मेरा नाम स्लिप हो रहा है, ISI का बंदा था अमेरिका में, सेमिनार पे सेमिनार, ट्रैक टू पे ट्रैक टू, और फ्री की दारू पीने के लिए और बिजनेस क्लास ट्रैवल के लिए, हाउ मेनी ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड टू सेल आवर सोल, ये भी घृणा की बात।
ट्रू बख्शी साहब। सो बख्शी साहब, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे, क्योंकि आपने हेड भी किया था, मैं अभी पढ़ रहा था, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में और ये चाइनीज ऐप जो ब्लॉक करे हैं, डू यू थिंक ये कोई रेलेवेंस है इन ऐप्स को ब्लॉक करने का या सिम्बॉलिक है सिर्फ? फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट ओनली अ सिम्बॉलिक मूव एंड नॉट एनीथिंग विल नॉट टर्न ऑन इट? एंड सेकेंडली के चाइना के पास, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, बहुत सारे टूल्स हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के, स्टार्टिंग फ्रॉम फेसबुक टू, हमने सबने देखा है कैसे एड्स आप कर सकते हैं, डिवाइसिव कर सकते हैं, टू अ फ्री मीडिया जो स्ट्रेंथ भी है पर आप जानते हैं वीकनेस भी हो सकती है, एंड हमारे पास चाइना के अंदर तो बहुत लिमिटेड है बिकॉज वो टेक्नोलॉजीज ही नहीं है वहां पे फ्री. सो दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं, फर्स्ट इज ऐप बैन्स एंड दिस, एंड सेकेंडली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दैट चाइना इज डूइंग विल डू, व्हाट कैन वी डू?
देखिए स्टार्टिंग फर्स्ट विद एप्स, एप्स को बैन करना ना सिर्फ इकोनॉमिक वजह से किया गया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप छोड़ दीजिए, साइबर वॉर, ये सारे ट्रोजन हॉर्सेस हैं, टूल्स हैं साइबर वॉरफेयर के. अगर मेरी पेनिट्रेशन है आपकी टिकटॉक के जरिए, इसके जरिए, वेबो के जरिए, वो गेम्स के जरिए, मैं वही रूट्स लेके आपके जो है नेटवर्क्स को अटैक कर सकता हूँ, बड़ी बुरी तरह से डिजेबल कर सकता हूँ. तो इनको ब्लॉक करना, ये जो रूट्स ऑफ इंग्रेस हैं, साइबर इंग्रेस हमारे अंदर जो जाल बिछा रखा था इन्होंने, उसको ब्लॉक करना साइबर वॉरफेयर के तरीके से बहुत बहुत लाजमी था. फर्स्ट प्राइमरी नीड वॉज नॉट इकोनॉमिक कि हम इनको चोट पहुंचाएं इकोनॉमिक इनके एप्स बैन करके, तो क्या उसको फर्क पड़ता है, बहुत कम उसकी यहाँ पे अर्निंग थी इससे. लेकिन ये साइबर वॉरफेयर के लिहाज से इट वॉज असेंशियल टू डू इट. आई एम वेरी ग्लैड दैट वी टुक दी स्टेप्स इन टाइम, क्योंकि अगर युद्ध होता है चीन के साथ तो द पहला अटैक दैट विल कम ऑन यू इज अ साइबर अटैक. और साइबर अटैक के जो मीन्स थे, जो रास्ते थे, जो कि उसके कॉन्डिट्स थे, वो सारे ये सारे जो उसने नेटवर्क फैला रखे थे, टिकटॉक इत्यादि इत्यादि, और कुछ नहीं तो डेटाबेसेस, सर्वर सारे चीन में, और वहां पे सारा डेटा हमारे लोगों का जा रहा है, एक एक बंदे का आपका जो प्राइवेट डेटा है वो वहां पे उनके सर्वर्स में टंगा पड़ा है, उसका इस्तेमाल करके वो बहुत कुछ नुकसान आपको पहुंचा सकते थे. तो बैनिंग द एप्स वॉज अ प्राइम रिक्वायरमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइबर वॉरफेयर. नाउ कम टू साइकोलॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. चीनी जो है वो पास्ट मास्टर्स हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में. सुन ज़ू के जमाने सुन ज़ू ने कहा ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, मेक एन अप्रोर इन द ईस्ट स्ट्राइक इन द वेस्ट. मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज से कोई 6 साल पहले मेरे को एक टास्क दिया गया था सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ने कि चाइना मिलिट्री पावर के ऊपर एक नेट असेसमेंट की जाए. तो एक टीम के साथ मैंने नेट असेसमेंट की थी जो एक किताब के तौर पे छपी है, चाइनाज मिलिट्री पावर. तब मैंने फोरकास्ट किया था कि 2020 तक चीन एक कारगिल टाइप सिचुएशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए, और उसके ज्यादा चांस है लद्दाख, अरुणाचल में नहीं जहां वो हल्ला कर रहा है, मेक एन अप्रोर इन द ईस्ट स्ट्राइक इन द वेस्ट. आज मुझे बड़ी एक किस्म से प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है कि जो फोरकास्ट मैंने 6 साल पहले किया था आज वो बिल्कुल सही उतरा है, और चीन ने आपको आड़े हाथ लिया है ईस्टर्न लद्दाख.
जनरल वो साइकोलॉजिकल पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि आइडली एज अ मिलिट्री मैन आपका मन करेगा बजट बढ़ी जाए, पर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया का बजट, बिकॉज हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में नहीं, बहुत लो है डिफेंस प्रोडक्शन का. Practically, with a broader perspective, what percentage of GDP you think India needs to push towards to be, as I said, God is on the side of the nation with most steel, most arms. तो बहादुरी के साथ साथ हमें कितना आपके हिसाब से realistically हम push कर सकते हैं अपने GDP का percentage which should be a defence budget?
देखिए साहब, 3% is the optimum. आज हमारा budget उतने ही percentage पे है जितना 1962 में था. हालांकि आज GDP has increased. So it's a much larger share, $72 billion है. चीन का 270-280 billion dollar के बीच में है per year. फिर पाकिस्तान भी खर्चा कर रहा है. You have to match both of them. तो साहब हमारी उम्मीद थी कि 3% of the GDP जब तक नहीं आएगा हम optimal defense नहीं अपना कर सकते two front के लिए. कम से कम 2% पे तो आना ही चाहिए. लेकिन साहब पिछले जो 10 साल जो हमारा UPA का राज रहा, हमारे डिफेंस जो बिल्डअप की ऐसी तैसी कर दी, और इसलिए हम बहुत घबराए हुए थे कि साहब इसको स्पीड अप करिए. और जब हमारी सरकार एनडीए सरकार आई तब भी हमने बहुत रोना रोया, लेकिन नौकरशाही ने ऐसा रियर गार्ड एक्शन फाइट किया है कि अब जाके क्यों आपको इतना एमरजेंसी परचेज करने पड़े साहब? 15 ईयर डिफेंस प्लान, 5 ईयर डिफेंस प्लान, अगर आपको जहां लड़ाई की भनक हुई ऐसे एमरजेंसी परचेज करने पड़े, साफ दिखाता है कि साहब वी हैवंट पेड द काइंड ऑफ अटेंशन दैट वी हैड टू पे टू डिफेंस। अब ये नौकरशाही का रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए सीडीएस साहब को वहां बिठा दिया गया है और उनको सेक्रेटरी की पावर दे दी। नहीं तो ये नौकरशाही ने नाक में दम करके रखा था, जाने ही नहीं देते थे। और आधा तो ये जो आपका फॉरेन फिक्सेशन है, फॉरेन 70% आपके हथियार बाहर से आ रहे हैं, क्यों नहीं बना सकते आप हमारे देश में? जब बनाने पे आई, हमारे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करिए। कल्याणी फोर्ज ने दुनिया की सबसे बेस्ट 155 मिलीमीटर गन बनाई, और क्या आप जानते हैं कि हमारी फौजें भी उनको, हमारी जो प्रोक्योरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का विंग, वो नहीं लेना चाहता था, वो इसराइल से खरीदना चाहते थे कि साहब वो सस्ता है। अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोल दिया है कि 155 मिलीमीटर गन इंपोर्ट बैंड। ये तरीका है। अब हम थोड़े सीरियस होते लग रहे, इसलिए हमको उम्मीद जगी है कि अब हम दांत खट्टे कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, कारगिल के युद्ध के टाइम भी हमारे पास बहुत चीजों की कमी थी, मुझे मालूम है कितनी कमी थी, क्योंकि मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था। तब भी हमारे चीफ ने कहा था वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गॉड इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द बिग बटालियन। भगवान उसी तरफ है जहां बड़ी ताकतवर फौजें होती, जीत वही जाती। अपनी फौजें ताकतवर करिए, बहुत तगड़े लड़के हैं आपके, वेर विदॉल दीजिए और देखते आप देखते जाइए कि होता है क्या। सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, 50% इंडियंस आर बिलो 25। अगर आज आर्मी रेस करनी है, भारत चीन से 2 गुना ज्यादा फौज खड़ी कर सकता है, और वो वन चाइल्ड पॉलिसी वाले नहीं है जो कि लड़ने को राजी नहीं होगा। चीन के लड़के सारे वन चाइल्ड फैमिलीज के हैं। दिस इज द मोस्ट रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन टू सेंड टू द आर्मी। 4 साल की कंस्क्रिप्शन करते हैं।
जनरल बख्शी,
आपके पास ताकत काफी।
मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि ये बहुत कहते हैं लोग के डेमोक्रेसी हैज अ सॉफ्ट बेली, के चाइना बीइंग अ डिक्टेटरशिप, मैं संख्याओं में बात नहीं कर रहा, पर उनको बॉडी काउंट का फर्क नहीं पड़ता, डिक्टेटरशिप है। यहाँ पे ये कई मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि इंडिया बॉडी काउंट अफोर्ड नहीं करता, डेमोक्रेसी है। तो एज अ सीनियर आर्मी मैन, सीनियर मिलिट्री एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है, डेमोक्रेसी हैज अ सॉफ्ट बेली व्हेन इट कम्स टू अ वॉर, इन द सेंस कि अगर बॉडी काउंट डिक्टेटरशिप बेटर झेल लेती है डेमोक्रेसी से, या इट्स अ वाइड क्वेश्चन, या यू थिंक कि डेमोक्रेसी में अगर बॉडी काउंट्स हाई होते हैं तब भी रिजॉल्व रह पाता है, हाउ डू यू सी दैट?
देखिए साहब, इसका बेस्ट आंसर है व्हाट डज हिस्ट्री टेल यू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन जीता? डेमोक्रेसी, हिटलर शाही, फासिस्ट, वो थे दूसरी तरफ, और इस तरफ डेमोक्रेसी कौन जीता? डेमोक्रेसी। वर्ल्ड वॉर वन में कौन जीता? डेमोक्रेसी। ठीक है साहब, तो डेमोक्रेसी कमजोर लगती है, बट लेट मी टेल यू, डेमोक्रेसी में बहुत इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। आप एक तानाशाह को डिक्टेटर फॉर लाइफ बना दीजिए, ही कैन गो वेरी रॉन्ग, और उसको फिर कोई करेक्ट करने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी में करेक्शन मैकेनिज्म है जो कि ओवरऑल जो रिजल्ट है बहुत अच्छा कर देते, वैल्यू इंजीनियर करती है। ठीक है साहब, और डेमोक्रेसीज में लुक वीक, उनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ डिक्टेटरशिप से ज्यादा है। डिक्टेटरशिप्स आर ब्रिटल, थोड़ी देर के लिए लगता है कि बहुत हावी हो रही है, हावी हो रही है, एकदम से कोलैप्स होती है। और अभी आप देखेंगे शी जिनपिंग साहब भी, उनके ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ अब टूटने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
थैंक यू सो मच बख्शी साहब फॉर योर टाइम, एंड लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और आई वुड रिक्वेस्ट यू थोड़े दिनों बाद फिर भी जब आपको टाइम मिले, तो सिचुएशन में चेंजेस जो आएंगे, वी मस्ट डू इट अगेन।
जय भारत, जय हिंद,
जय हिंद। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा कि एक हमने 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन किया इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे चाइना के साथ। मेरा एक वीडियो पहले भी पड़ा हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट है नेशनल सिक्योरिटी की, आप उसमें जाइए, उसमें 4 वीडियोस हैं जब मैंने ये चैनल शुरू किया था मैं नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बात कर रहा था, तो आप ये प्लीज देखिएगा जून की, मेजर गौरव आर्या के साथ एक वीडियो है, अभिजीत अय्यर के साथ दो वीडियोज हैं, और ये वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो जो जो लोग आ रहे हैं हम नेशनल सिक्योरिटी पे ट्राई करेंगे कि फ्रीक्वेंटली गेस्ट्स बुलाएं और इस इश्यू पे बात करें और भी बहुत सारे अहम इश्यूज पे बात करें। जो जो पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी कॉन्वर्सेशन में है इंटेलेक्चुअल विचार के टॉपिक्स पे वीडियोस, वो भी एक प्लेलिस्ट है, और एक नेशनल सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट है। तो आप दोनों प्लेलिस्ट में आप देखिए, आपको डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, फ्री स्पीच ये सब समझना है तो वो भी एक प्लेलिस्ट है, और जैसा मैंने कहा नेशनल सिक्योरिटी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो जरूर देखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप आपको पूरा इंडिया चाइना पर्सपेक्टिव समझ आया।